हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तुमने सिद्धार्थ खुराना की जान लेने की कोशिश की है, अब इसकी कीमत तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी चुकाएगा। उस वक्त सिद्धार्थ बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वेल, उसका खून करने के बाद तभी अचानक सिद्धार्थ का असिस्टेंट रौनित वहां आया था। उसके हाथों में उस वक्त फ़ोन था। रौनित सिद्धार्थ के साथ हमेशा साई की तरह रहा करता था। उसके हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ था। अपने बॉस के हर पल बदलते हुए बर्ताव को भी वो देखा करता था। रौनित ने वहां आकर सर झुकाते हुए सिद्धार्थ के हाथों में फ़ोन थमा दिया था। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ की दादी उर्वशी जी का था। अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना चेहरा एकदम नॉर्मल कर लिया था और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे के खून को साफ करते हुए नॉर्मल वॉइस में बोला, क्या हुआ दादी, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? तब दूसरी तरफ से उसकी दादी उर्वशी की फ़िक्रमंद होकर बोली, सिद्धार्थ बेटे कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब से कुछ दिनों तक तुम खुराना विला में ही रहोगे, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस से अपने काम पर जाने की? उर्वशी जी सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थीं और उन्हें डर सताने लगा था कि अगर उस एक्सीडेंट में सिद्धार्थ को कुछ हो जाता तो ना जाने फिर क्या होता, उनके वंशज पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, क्योंकि सिद्धार्थ खुराना उनका इकलौता वंशज था, वो पूरे के पूरे खुराना अम्पायर का मालिक था। उन्हें सिद्धार्थ की बहुत चिंता हो रही थी। कहीं न कहीं उर्वशी जी की परेशानी समझते हुए सिद्धार्थ खुद शांत होते हुए कड़क आवाज़ में बोला, दादी आप क्यों परेशान होती हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ खुराना है और मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तब दादी थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, बेटा मैं तो कहती हूँ तू शादी कर ले, आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? अगर एक बार तेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो तेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो जाएगा, उसके बाद तू इस तरह से दिन रात काम के पीछे नहीं दौड़ेगा। तब सिद्धार्थ ने फ़ोन की स्क्रीन की ओर घूरता है और अगले पल दादी से बोला, दादी प्लीज़ अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए। ये बोलकर बिना दादी के जवाब दिए उसने फ़ोन रख दिया था। उर्वशी जी अब फ़ोन को गुस्से से घूरने लगी थीं और फिर जल्दी ही कुछ सोचते हुए उर्वशी खुराना ने अपने एक ख़ास आदमी जिसका नाम जेम्स था उसे बुलाया। जेम्स पिछले 20 सालों से उर्वशी जी के लिए काम कर रहा था, वो उनका भरोसेमंद आदमी था। तब उर्वशी जी जेम्स की ओर देखकर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और मुझे पता है कि मेरा पोता कभी भी शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं हर हाल में अपने परिवार के लिए वारिस चाहती हूँ, तो तुम मेरा एक काम करो। इतना बोलकर जल्दी ही उर्वशी जी ने अपने शब्दों में जेम्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस शुरू कर दिया था और उर्वशी जी से चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर उस आदमी की जान लेने के बाद अपने आप को धोकर अच्छे से क्लीन करने के बाद सिद्धार्थ खुराना करीब 2 से 2.5 घंटे बाद सिद्धार्थ खुराना एक कमरे से बाहर निकला। झलक ने देखा कि काली शर्ट पहने वो अपने कमरे से निकलकर सीधा लिफ्ट में चला गया था और तब झलक जो कि छुपकर उसका इंतज़ार कर रही थी वो भी उसका पीछा करते हुए उस लिफ्ट में घुस गई थी जिस लिफ्ट में इस वक्त सिद्धार्थ खुराना मौजूद था। उस नाइट क्लब की पहली 8 मंजिलें बाहर थीं और होटल के सुइट ऊपरी मंजिल पर थे। लिफ्ट के अंदर जाकर झलक ने एक सरसरी सी नज़र सिद्धार्थ खुराना पर डालती है जो उससे पूरे आधे सर लंबा था। उसने देखा कि उससे शराब की बदबू आ रही थी, हालांकि वो बेहद हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसके हैंडसम से चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी। वो कभी अपनी लंबी उंगलियों से अपनी टाई को खींचता या फिर अपना बार बार सर पकड़ता। इससे साफ पता चल रहा था कि शायद वो गहरे नशे में है। अचानक सिद्धार्थ खुराना ने झलक की तरफ देखा, सीरियस लुक देते हुए बोला, तुम कौन सी मंजिल पर जा रही हो? हालांकि उसने बड़ी ही कोल्ड वॉइस में पूछा था। अचानक पूछे गए सवाल से झलक को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि एक तो वो उस वक्त लड़के के गेटअप में थी, तो वो जल्दी से अपनी आवाज़ बदलकर मर्दानी आवाज़ में बोली, वो मैं 8वीं मंजिल पर जा रहा हूँ। जैसे ही उसके शब्द निकले सिद्धार्थ खुराना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और 8वीं मंजिल पर लिफ्ट खुली। तब तुरंत सिद्धार्थ बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे झलक भी सहमते हुए चली गई। हालांकि सिद्धार्थ खुराना कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक गया और झलक जो कि तेजी से उसकी तरफ चल रही थी अचानक से वो उसकी पीठ से टकरा गई। आउच, तब झलक जल्दी से माथा रगड़ते हुए बोली, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी माफ़ी मांग पाती, उसके अचानक सामने खड़ा आदमी अचानक घूम गया और अपने बड़े से हाथ से उसने उसका गला पकड़ लिया और बड़ी ही कोल्ड वॉइस में पूछा, बताओ कौन हो तुम। तब झलक जल्दी से बोली, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी माफ़ी मांग पाती, उसके अचानक सामने खड़ा आदमी अचानक घूम गया और अपने बड़े से हाथ से उसने उसका गला पकड़ लिया और बड़ी ही कोल्ड वॉइस में पूछा, बताओ कौन हो तुम। अब झलक को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन सिद्धार्थ खुराना की पकड़ और ज़्यादा उसके गले पर मजबूत हो गई थी, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और झलक ने उसके हाथ पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे। वो उसे ज़ोरों से मार रही थी और बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलकर सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ खुराना ने उसकी आवाज़ पर गौर किया और साथ ही साथ उसके पहने हुए कपड़ों पर ध्यान दिया। उसने अपने सर पर एक सुरक्षा कैप यानी कि टोपी पहनी हुई थी, साथ ही साथ उसके चेहरे पर आदमियों वाली मूछें थीं और उसके सर पर एक पगड़ी सी बंधी हुई थी। अब सिद्धार्थ खुराना को झलक को देखकर कुछ शक पैदा हुआ और अचानक से उसका गला जोर से पकड़े पकड़े उसने उसे एक झटका सा दिया और देखते ही देखते झलक के खूबसूरत लंबे घने बाल अब सिद्धार्थ खुराना के आँखों के सामने थे। तब सिद्धार्थ खुराना उसे घूरते हुए बोला, तुम एक लड़की हो। अब क्योंकि झलक एक क्लब में काम करती थी, तो इसीलिए उसने लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए अपने आप को एक लड़के के वेश में छुपाया हुआ था। उसके साथ काम करने वाले और साथ ही साथ उसके दोस्त के अलावा किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता था कि वो एक लड़की है। तब सिद्धार्थ खुराना की आंखें झलक को देखकर एकदम से ही रेड हो गई थीं और वो उसे घूरते हुए बोला, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तभी झलक उसे बता देना चाहती थी कि वो वही लड़की है जिसने आज से ठीक 3 दिन पहले उसकी जान एक रोड एक्सीडेंट में बचाई थी। अब झलक उसको ये बता देना चाहती थी और साथ ही साथ ये बताना चाहती थी कि उसने उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और उसने उसके इलाज में पूरे 20,000 भरे हैं, तो वो उसके पैसे लौटा दे। तो इसीलिए अब झलक ने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए आई हूँ। उसने बस इतना ही बोला था। लेकिन इससे पहले कि झलक अपनी पूरी बात कर पाती, सिद्धार्थ खुराना ने उसे रोक दिया और उसकी ओर घूरते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। अब जैसे ही अचानक सिद्धार्थ खुराना ने ये बोला, झलक की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी और वहीं अब सिद्धार्थ खुराना का सर पूरी कट कर पूरी तरह से घूमने लगा था, क्योंकि उसे आज एक रूम में एक ऐसा ड्रग्स दिया गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब क्योंकि वो ड्रग्स किसने दिया था, ये तो हमें आने वाले चैप्टर में ही पता लगने वाला था। लेकिन अब अपने सामने झलक को देखकर उसे लगा कि ज़रूर इसी लड़की ने उसे ड्रग्स दिया है, क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहती है।
अब तो सिद्धार्थ खुराना का दिमाग और भी ज़्यादा गर्म हो चुका था। क्या झलक सिद्धार्थ से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।